श्रेष्ठ गीत अध्याय 6। अब यरूशलेम की पुत्रियां उसे सामूहिक गान में जवाब देती है। श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 1। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? और वो उत्तर देती है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 2 और 3। मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। वो अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। अब दुल्हा उसको जवाब देता है और कहता है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 4 से लेकर 6 तक। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा की नाई सुंदरी है। तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूं। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान है जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। एक बात कहने के बाद आपको फिर से उसी बात को दोहराना पड़ता है। मेरे कहने का अर्थ है, आप इसे अधिक और कुछ नहीं कह सकते हैं। श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 7 से लेकर 9 तक। तेरे कपोल तेरी लठों के नीचे अनार की फांग के समान से देख पड़ते हैं। वहां 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, वो उनमें से एक है। श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 9 में आगे लिखा है, अपनी माता की इकलौती अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। वो ये सारी तारीफ अपनी प्रेमिका तथा यरूशलेम की पुत्रियों के लिए करता है। जो ही वो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है, त्यों ही मित्र कहते हैं। श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 10। ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है? जहां तक आत्मिकता का संबंध है, आप इसे कलीसिया से जोड़ सकते हैं। ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है? इतिहास गवाह है, मनुष्य का जीवन अंधकार और निराशाजनक रहा है। अभी भी हम अंधकार के जीवन में जी रहे हैं। आज मनुष्य ने लड़ाइयों, लालच, दुष्कर्मों, दूसरे मनुष्यों के अमानवीय व्यवहार, निर्दयता और गरीबों एवं कमजोरों के शोषण के कारण दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, शारीरिक एवं मानसिक वेदना और त्रासदी अपने ऊपर लाई है। ये इतिहास में एक लंबी अंधेरी रात है, लेकिन कलीसिया भोर की आशा में है। कलीसिया दुनिया में घोषणा करती है कि वो इसके अंधेरे में लिपटी तो है, परंतु नया दिन आने वाला है। यही कलीसिया का निरंतर संदेश रहा है, एक नया मौका जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। न केवल संसार में नया दिन आने वाला है, परंतु आपके जीवन में भी नया दिन आ सकता है। वो अंधकार जिसमें आपका जीवन फंस गया है, एक नए दिन में बदल सकता है। परमेश्वर का काम हमेशा एक नई शुरुआत होता है। वो आपको सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का मौका देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। रात में हम सुबह की प्रतीक्षा करते हैं, जो एक प्रतिदिन की आशा है। मनुष्य नए जीवन की प्रतीक्षा में जीता है, जो उसके जीवन में आने वाला है, जो सुंदरता में चंद्रमा के तुल्य है। चांद की रोशनी प्रतिबिंबित रोशनी होती है, सूरज की रोशनी चांद में प्रतिबिंबित होती है, ऐसे ही कलीसिया की रोशनी भी प्रतिबिंबित रोशनी है। ये यीशु मसीह की रोशनी है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8:12, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह की गवाही देते हुए यूहन्ना कहता है, वो सच्ची ज्योति है जो दुनिया में आने वाले हर मनुष्य में चमकती है। लेकिन मनुष्य ने उस ज्योति को त्याग दिया, उन्होंने उसे सलीब पर लटका दिया, उन्होंने उसे कब्र में रख दिया और कब्र के दरवाजे पर पत्थर लुढ़का दिया। और जहां तक दुनिया का सवाल है, उन्होंने अपनी ओर से तो ज्योति को बुझा दिया, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, आज भी जीवित है। जैसे चांद की रोशनी आपको बताती है कि सूरज अभी भी चमक रहा है, जबकि सूरज आपको दिखाई नहीं देता, परंतु जैसे आप चांद को देखते हैं और उसमें सूरज की रोशनी के परावर्तन को देखते हैं, तो आप जान जाते हैं कि सूरज अभी भी चमक रहा है। इसी तरह संसार जो यीशु मसीह को नहीं देख सकता, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन के द्वारा जानता है। संसार हमारे जीवन में मसीह की महिमा का प्रतिबिंब देखता है कि मसीह जिंदा है। यीशु मसीह की ज्योति हमारे द्वारा चमकनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मती 5:14-15, तुम जगत की ज्योति हो, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। चांद के पास रात में शासन करने के लिए कम ज्योति होती है और अंधकार को जीतने के लिए भी। इसी प्रकार इंसान के अंधकार पूर्ण इतिहास में ज्योति परमेश्वर के पास है, जो चंद्रमा के तुल्य सुंदर है। जब हम अपने चारों ओर के अंधकार पूर्ण संसार में यीशु मसीह की ज्योति और महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं, तब हम उसके गवाह ठहरते हैं। यीशु मसीह की उस ज्योति को उचित रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए हमें इस सांसारिक जीवन से उठकर जीवन व्यतीत करना जरूरी है। अगर हम इस संसार में जिए और सांसारिक कार्यों में लिप्त रहें, तो हम दुनिया में उस ज्योति प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। आपको इस दुनिया हटकर जीना पड़ेगा। हमें अपने चारों ओर संसारिकता से लिप्त लोगों से हटकर जीना पड़ेगा। यहां हमेशा दोस्तों और मित्रों का दबाव बना रहेगा। यहां समाज का हमेशा एक निरंतर दबाव बना रहता है, जो आपके जीवन को संसारिकता की ओर खींचता है। संसार में लोग हमेशा इस उलझन में पड़ते हैं, हर कोई तो इस बात को कर रहा है। संसार आपको निचले स्तर का जीवन और अनुभव देने के लिए बढ़ावा देता है और अपनी ओर खींचता है, लेकिन सांसारिक जीवन जीने से आप पुत्र की महिमा को कभी प्रतिबिंबित नहीं कर पाएंगे। ये तभी हो सकता है जब हम सांसारिकता से हटकर जीवन जिए, ताकि ये संसार हम में उस ज्योति को देखे। सूर्य की तरह निर्मल। यहां फिर से एक बार हमें सूर्य शब्द का थोड़ा बदलने की जरूरत है। इसको सूर्य लिखने की जगह बड़े अक्षरों में पुत्र लिखें। पुत्र की तरह निर्मल। जैसा पुत्र शुद्ध है, उसी प्रकार हम भी अर्थात कलीसिया को भी शुद्ध होना है। जैसे वो पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है। परमेश्वर ने कहा, पहला पत्रस पहला अध्याय 16 पद, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु ने कहा, मती 5 अध्याय 48 पद, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पहला योहन्ना 3 अध्याय 3 पद, जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मसीह हमारी धार्मिकता का मानक है, जो हम सबको तुरंत अंधकार से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि हम में से कोई भी मसीह की तरह शुद्ध नहीं है। हम में से कोई भी मसीह की तरह पवित्र नहीं है। हम में से कोई भी मसीह की तरह सिद्ध नहीं है। मसीह हमारी धार्मिकता का मानक है, लेकिन मैं इस धार्मिकता को अपने कामों, नियमों, कानूनों तथा व्यवस्था के द्वारा नहीं पा सकता। गलातियों 2 अध्याय 21 पद, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता है। लेकिन परमेश्वर ने धार्मिकता का एक नया आधार स्थापित किया है, जो वास्तव में नया नहीं है। ये वही आधार है जिसके द्वारा अब्राहम धार्मिकता में गिना गया था। मूसा के द्वारा व्यवस्था दिए जाने से 400 साल पहले अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिना गया था। व्यवस्था कभी भी इंसान को धर्मी बनाने के लिए नहीं बनाई गई, परंतु वो केवल इंसान को उसके पाप और दोष दिखाने के लिए बनाई गई, ताकि हम उस धार्मिकता की तरह बढ़े जो हमारी पहुंच से दूर है। ये वही धार्मिकता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से मिलती है। इसलिए हम गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, गलातियों 3 अध्याय 24 पद, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारी शिक्षक हुई है। मसीह तक पहुंचाने अर्थात हमें इस बात का एहसास दिलाने में कि हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते, हमें मदद चाहिए और परमेश्वर मदद का उपाय है। और तब हम सूर्य की तरह निर्मल बन जाते हैं, क्योंकि ये उसकी धार्मिकता है जो हमारे परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने के द्वारा हमें दी गई है। इसलिए दुल्हा कहता है, हे वो दोष मुक्त है। इसलिए परमेश्वर आपको देखकर कहता है, हे तुम दोष मुक्त हो, तुम निष्कलंक हो, तुम शुद्ध हो, तुम धर्मी हो, क्योंकि वो आपको अपने पुत्र में देखता है और मसीह की धार्मिकता आपको दी जाती है। और अंत में कलीसिया झंडा लिए हुए खड़ी सेना के समान दिखाई पड़ती है। परमेश्वर कलीसिया को यीशु मसीह के विरोधियों के सामने ऐसा ही देखना चाहता है। हम परमेश्वर के विरोधियों के लिए वैसे ही भय का कारण हो जैसे झंडा के लिए खड़ी सेना का भय। इस तरह कलीसिया को परमेश्वर के विरोधियों के सामने भय की तरह डटे रहना है। दुल्हा गाता है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 11, मैं अखरोट की बारी में उतर गया कि तराई के फूल देखूं, और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले की नहीं। दुल्हन गाती है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 12, मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। सहेलिया समूह गान गा रही है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 13, लौटा लौटा हे शुलेमिन, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। दुल्ला गाता है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 पद 13, क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसे महनेम के नृत्य को देखते हैं?